السلام علیکم خواتین حضرات، اس وقت میر تقی میر کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے اور یہ شعر کافی مشہور ہے۔ اگر آپ کو اردو ادب سے دلچسپی ہے اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہے جو ادبی گفتگو کرتے ہیں، تو آپ نے یقیناً یہ شعر سن رکھا ہوگا۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ اسیر کے معنی ہوتے ہیں قیدی ہونا۔ اب انہوں نے جو کہا ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، تو ہم ہوئے تم ہوئے سے ان کی مراد ہے کوئی بھی، یعنی کوئی بھی ہو، چاہے وہ میر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ خواہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں، اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ دیکھیے، زلف جو ہے اس کو شاعر زنجیر کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اور اسیر آپ کو ابھی بتایا ہے کہ قیدی کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ وہ اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں، محبوب کی بات کر رہے ہیں یا معشوق کی بات کر رہے ہیں، کہ دنیا میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ میر صاحب ہی کیوں نہ ہو، ان پر عاشق ہو جاتے ہیں اور وہ سب کو اپنی زلفوں کی زنجیر میں باندھ لیتے ہیں۔ زنجیر میں باندھ لینے سے مراد کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی طرح ان کو قید میں رکھ دیا جیسے کہ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ زلفوں سے باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، اپنے حسن کے جادو میں اس کو پھنسا کر اس کو اپنے اوپر عاشق کروا لیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ نہیں آتے کسو کی آنکھوں میں، ہو کے عاشق بہت حقیر ہوئے۔ کسو آپ کو پہلے بھی بتایا، پرانی اردو ہے، کسی کے لیے انہوں نے اس کو کسو استعمال کیا ہے، اور آنکھوں میں نہ آنے کا مطلب ہوتا ہے قدر نہ ہونا، آپ کو کوئی کچھ نہ سمجھے، بہت معمولی سمجھے، بہت حقیر سمجھے، آپ کو حقارت کی نظروں سے دیکھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہو کے عاشق بہت حقیر ہوئے، کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ عشق شروع کیا ہے ہماری تو عزت ہی چلی گئی ہے، یعنی کوئی بھی ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ تو ظاہر ہے کہ جو عاشق حرکتیں کرتے ہیں، جو ہم پہلے پرانی شاعری میں پڑھتے رہے ہیں اور کئی مرتبہ ہم نے یہاں آپ کے لیے بیان بھی کیا ہے کہ جب آدمی عاشق ہو جاتا ہے تو اس کو اپنی عزت کا کوئی خیال یا کوئی پاس نہیں رہتا، صحراؤں میں چلا جاتا ہے، جنگلوں میں گھومنے لگتا ہے، کبھی محبوب کی گلی میں پڑا رہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بالکل ہی محبوب کے لیے، محبوب کے ہاتھوں سے فنا کر لیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسا آدمی جو کہ عشق میں عام آدمیوں سے ہٹ کر پاگلوں کی طرح گھومتا ہو، اور جس کی بات جو ہے اس میں کوئی وزن نہ رہ جاتا ہو، جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، تو اس آدمی کو ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تو جس کو کوئی پسند نہیں کرتا، جس کی کوئی عزت نہیں کرتا، تو وہ ایک طرح سے حقیر ہو جاتا ہے، یعنی اس کو لوگ کم عزت والا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس جب سے ہم نے عشق کیا ہے ہم کسی کی آنکھوں میں نہیں رہے، اور ہم تو بس عشق کرنے کے بعد حقیر ہو کر رہ گئے۔ اب شعر دیکھیے، آگے یہ بے ادائیاں کب تھیں، ان دنوں تم بہت شریر ہوئے۔ بے ادائیاں کا مطلب ہے بے وفائیاں، یعنی محبوب کو دیکھنا، نظریں پھیر لینا، اس کی بات کو نہ سننا، اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، ان سب کو انہوں نے بے ادائیاں کہا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے، یعنی پہلے، آگے سے مطلب ہے یہاں پر پہلے، تو کہتے ہیں کہ پہلے تو تم ہم سے اس طرح بے وفا نہیں تھے، تمہاری جو بے ادائیاں تھیں، بے وفائیاں تھیں، وہ پہلے تو نہیں تھی، لیکن ان دنوں تم بہت شریر ہوئے۔ شریر کا مطلب ہوتا ہے شیطان، جو طرح طرح کی شرارتیں کرے۔ تو یقیناً میر صاحب کو ایسی شرارتوں سے اپنے محبوب کی واسطہ پڑا ہے جس سے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا محبوب جو ہے وہ اب بے وفا ہو گیا ہے۔ تو وہ گلہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے، لیکن ان دنوں تم بالکل ایسے ہی ہو گئے ہو جیسے کہ کوئی بے وفا ہوتا ہے، نہ ہمیں دیکھتے ہو، نہ ہمیں ملتے ہو، نہ ہم سے کوئی وعدہ کرتے ہو، تو تم تو بالکل شریر ہو گئے ہو۔ شریر پیار میں کہا گیا ہے، جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو آپ کہہ لیں یا نا سمجھ کو کہہ لیں، تو انہوں نے ایک پیار میں जैसे बच्चों को कह दिया जाता है कि फला बच्चा बहुत शरीर है, तो वो इस आलम में भी कि महबूब उनसे बेवफाई कर रहा है, मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा है, उनकी तरफ से उसने निगाहें फेर ली हैं, फिर भी वो उसको सिर्फ प्यार में शरीर कह रहे हैं। अब ये शेर देखिए, अपने रोते ही रोते सहरा के गोशे गोशे में आप गिर हुए। आप गिर का मतलब होता है वो जगह जहां पर पानी हो, पानी को रखने वाली जगह को आप गिर कहते हैं। और सहरा हम आप जानते हैं किसे कहते हैं, रेगिस्तान को कहते हैं, या कोई ऐसी जमीन के जहां पर मिट्टी बहुत ज्यादा खुश्क हो उसको भी सहरा कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम तो इतने ज्यादा रोए कि गोशे गोशे, गोशे गोशे का मतलब है हर कोने में, आप गिर हुए, यानी कहने लगे कि हम इतना ज्यादा रोए कि जहां पर भी कहीं पानी खड़ा हो सकता था सहरा में, वहां पर पानी भर गया। अब इससे ये भी पता चलता है कि शहर में रहते हुए या आबादी में रहते हुए नहीं रो रहे थे, बल्कि वो रो रहे थे सहरा में जाके। तो इश्क इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उन्होंने आबादी को छोड़ दिया था और जंगल या सहरा की तरफ निकल गए थे, और वहां हर वक्त अपने महबूब की याद में रोते रोते घूमते फिरते थे। तो वो ये कह रहे हैं कि बस ये हमारे रोने का ही असर है कि तुम्हें यहाँ पर जो हर कोने में जहां पर भी पानी ठहर सकता था, जो तुम्हें पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये किसी और जरिए से नहीं आया बल्कि ये हमारे आंसू हैं। अच्छा, अब ये शेर देखिए कि ऐसी हस्ती अदम में दाखिल है, ने जवां हम न तिफले शीर हुए। हस्ती को अपने आप को कह रहे हैं कि हमारा होना जो है वो अदम में दाखिल है, यानी अदम उसको कहते हैं कि जहां पर कुछ ना हो, यानी कुछ होने से पहले का जो मरहला है उसको अदम कहेंगे। मिसाल के तौर पे इंसान को नहीं पता कि वो पैदा होने से पहले कहाँ था, तो ये कहते हैं कि वो जगह उसको आप ना होने के बराबर उस बस्ती को समझिए, उस हस्ती को समझिए जो कि ना कभी जवान हुई और ना कभी वो बच्चा थी। तिफले शीर यानी वो बच्चा जो दूध पीता हो। आपने देखा होगा कि नए जवान हम ना तिफले शीर हुए, नए का मतलब ही यहां पर ना ही लीजिए, ना ही इसको समझ के आप पढ़िएगा। तो कहते हैं कि हमारी हस्ती क्या है, हम तो ना कभी बच्चे थे और ना हम पर कभी जवानी आई, तो बस हमें तो ऐसा समझा जाए कि जैसे हम अभी तक अदम में हैं, हम अभी तक दुनिया में आए नहीं हैं। अगला शेर है कि आप ये समझ लीजिए कि जो अगला शेर हम अब आप पढ़ेंगे आपके लिए, ये शेर ये जो अभी हमने ऊपर शेर पढ़ा है, ऐसी हस्ती अदम में दाखिल है, उसके तसलसल में ही आप इसको ले सकते हैं। यानी शेर है, यानी मानिंदे सुबह दुनिया में हम जो पैदा हुए सो पीर हुए। मानिंदे सुबह मतलब है कि सुबह की तरह, कहते हैं कि हम तो बस ऐसे हैं कि हम पर पैदा होते ही हमारे ऊपर बुढ़ापा आ गया, यानी हमने वो जवानी की जो जो एक मंजिल होती है जिसमें लोग हंसते हैं खेलते हैं खुश होते हैं, वो हम बिल्कुल भी वो हम बिल्कुल भी नहीं गुजार सके। असल में तो कहना यही चाहते हैं कि हमने बस दुनिया में आते ही इश्क शुरू कर दिया, बस तो हम तो ये हो गया कि उसके रंज और उसके गम और उसकी तकलीफें परेशानियां और महबूब की बेवफाइयां कुछ भी कह लीजिए, तो हम तो बस समझ लें कि बूढ़े ही पैदा हुए थे। पीर कहते हैं बूढ़े को, तो वो कहते हैं कि बस हमारा पैदा होना ना पैदा होना एक बराबर था, हमने कभी जवानी तो देखी नहीं, क्योंकि जब जवानी आई आई नहीं हम पर, जवानी आ ही नहीं सकती थी क्योंकि हमने तो पैदा होते ही अपने आप को अपने दामन को इश्क में उलझा लिया था। अब शेर है कि मत मिल अहले दोवल के लड़कों से, मीर जी उनसे मिल फकीर हुए। दोवल का मतलब होता है पैसे वाला, अमीर, जिसके पास पैसा हो, जरदार। पैसा रखने वाला आदमी हो, तो और अहले दौल यानी दौलत वाले, तो वो कह ये रहे हैं कि जी आपसे पहले भी हमने कहा था कि ये जो जो लड़के हैं दौलतमंदों के जो लड़के हैं इनसे मत मिला करो, इनसे तुम मिले और मिलने के बाद तुम फकीर हो गए। अब ख्वातीन हजरात ये शेर जो है ये सिर्फ ये इन दो चार लाइनों पर ही खत्म नहीं होता। असल बात यह है कि चूंकि पुराने शोरा का है, हमने आपको बताया था कि उर्दू गजल फारसी गजल से मुतासिर है और उर्दू में जो गजल आई वो ईरान से आई, तो वहां पर जो महबूब होता था उसका जो इस्तारा रखा था या इशारा रखा था, ये मिसाल या तशबीह कुछ भी कह लीजिए, वो खूबसूरत लड़के थे, चाहे किसी खातून के इश्क में भी बात की जा रही हो लेकिन वो लड़कों के ऊपर ही रख की जाती थी। अब ये हमारे इल्म में नहीं है कि क्या ख्वातीन के का हवाला देने से वहां के जो माशरती या समाजी जिंदगी थी उसमें कोई एतराजात होते थे या क्या था, ये हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये जब गजल हिंदुस्तान में आई तो उन्होंने भी वही तस्वीर दे ली कि बजाय इसके कि औरत को औरत कहकर बराह रास्त मुखातिब किया जाता, लड़के को मुखातिब किया गया और औरत को यानी फर्ज कर लिया गया कि लड़के को मुखातिब करने का मतलब यह है कि औरत को मुखातिब किया जा रहा है। ये बहस बहुत लंबी है, यहां तो 10-12 मिनट की वीडियोस होती हैं, तो इसमें जो हमारा लेक्चर होता है वो मुख्तसर तरीन होता है, तो हम बहुत ज्यादा तफसील से ये सब कुछ बयान नहीं कर सकते क्योंकि ये 12-15 मिनट की वीडियो ही लोग बहुत बड़ी मुश्किल से देखते हैं, तो अगर सिर्फ हम इस शेर की तशरीह करने बैठ जाएं तो आप यकीन कीजिए कि इसमें एक घंटा तो कम अज कम चाहिए आपको। उसमें यकीनन उन लोगों की दिलचस्पी का सामान तो होगा जिन्हें शेर व अदब से दिलचस्पी है, लेकिन अक्सर हमारे दोस्त शॉर्टकट की दुनिया है, वो चाहते हैं कि बस वो जल्दी जल्दी सब कुछ समझ लिया करें। बहरहाल ये तो ऐसे ही दो चार जुमले बीच में आ गए, तो ये अहले दौल के लड़कों से, पैसे वालों के लड़कों से। अब इसका दूसरा माना ये भी लिया जा सकता है कि जिनके पास दौलत बहुत है, और दौलत कौन सी है, दौलत है हुस्न की दौलत। तो कहते हैं कि हम जो ये हसीनों से मिलते हैं जो कि हुस्न की दौलत से मालामाल हैं, तो इनसे मिलकर हम तो अपने आप को फकीर समझते हैं क्योंकि हमारे पास ना तो ये दुनिया वाली दौलत है और ना कोई हम इतने हसीन और जमील हैं, तो हम अपने आप को उनके सामने एक फकीर समझते हैं, एक ऐसा फकीर जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ख्वातीन हजरात बस इस शेर का इतना ही मतलब हमारी तरफ से काफी समझिए, और बस ये हम आपके आपको इस आज की गजल में यही कुछ बताना था। कुछ दोस्त हमारे कहते हैं उनको गिला है कि हम जो बात करते हैं कभी कभार तो उसमें कभी कोई मिसरा रह जाता है, कभी कोई लफ्ज रह जाता है, तो हम आपसे अर्ज करें कि हम ये जो गजलें आपके लिए यहाँ रिकॉर्ड करते हैं ये हम दीवान में से देख कर गजलें पढ़ते हैं और उसी वक्त ही उनके मतालब बयान करना शुरू कर देते हैं, तो ये एक तरह से एक लेक्चर होता है। अगर लिखा हुआ हो तो इंसान उसको दूसरी तीसरी मरतबा पढ़ लेता है, तो लेक्चर में अक्सर ऐसा होता है कि हम बाज़ोकात बाज़ अल्फाज हैं वो भी गलत हमसे हो जाते हैं, बाज़ोकात हम शेर वजन में नहीं पढ़ पाते, तो ये छोटी मोटी गलतियां होती हैं, तो इनको आप जरा इनसे दरगुजर किया कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अब बस आज मीर की इस गजल के मुश्किल अल्फाज और शेरों का कुछ मतलब यही हमारी समझ में आया जो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिया, तो फिर आपसे मुलाकात होती है मीर की किसी और गजल के साथ किसी और महफिल में। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज़।